Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we do not address company-specific or stock-specific queries. You can call us on 2331-4444. 2342-1050 and 2331-0464. Do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Harsh Ranjan.
Namaskar. Hazir hain Market Mantra ke ek aur taza ank ke saath. Is karyakram mein desh videsh ki aarthik khabron ka jaiza lenge, saath hi nazar dalenge pramukh antarrashtriya share bazaron ke chadhte utarte graph par. Aur shrotaon, jaisa ki aapko maloom hai, din shanivar ka hai aur aaj ka din to aapka hi hota hai. Arth jagat se sambandhit, share market se sambandhit, देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी सवाल हो, हमसे फोन करके जरूर पूछें. तीन टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं. नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2310-464. तीनों नंबर दिल्ली के. 011 एसटीडी कोड प्रीफिक्स करें, नंबर डायल करें, अपने सवाल पूछें, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इकोनॉमिक एंड फाइनेंस जर्नलिस्ट राजीव रंजन उपस्थित हैं. राजीव, बहुत बहुत स्वागत है आपका.
नमस्कार.
एंड नाउ लेट्स बिगिन टुडेज एडिशन विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश.
थैंक यू हर्ष. Prime Minister Narendra Modi to release the 19th installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme on Monday. Domestic markets declined for the second straight week. Both Sensex and Nifty drop over 0.5%. And US benchmark indices fall nearly 2% on concerns about economy and tariffs.
Pradhan Mantri Narendra Modi PM Kisan Samman Nidhi ki 19th kisht somvar ko Bihar ke Bhagalpur se jari karenge. इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे सप्ताह आधे प्रतिशत की गिरावट और अर्थव्यवस्था और टैरिफ की आशंकाओं के बीच अमरीकी शेयर बाजारों में लगभग 2% की बड़ी गिरावट.
Prime Minister Narendra Modi will release the 19th installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan scheme, on Monday from Bhagalpur, Bihar. The scheme provides 6,000 rupees annually to landholding farmers in three equal installments. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said the day of the release will be celebrated as Kisan Samman Samharoh to create awareness about the schemes of the central and state governments. He said more than 9.8 crore farmers across the country will receive financial assistance of over 22,000 crore rupees through direct benefit transfer. Mr. Chauhan said that farmer welfare is the top priority of the Modi government. He said more than 3.46 lakh crore rupees have been disbursed so far to more than 11 crore farmer families in the country under the PM Kisan scheme. Mr. Chauhan mentioned that programs will be organized in 731 Krishi Vigyan Kendras across the country on Monday. The minister said approximately 2.5 crore farmers will join the program physically and virtually. And now let's take the first call coming in from Gurugram. Our listener Anil is calling us from there. Anil, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Looks like
Anil ji, kya awaaz aa pa rahi hai? नहीं, ऐसा लगता है अनुभव कि अनिल के साथ संपर्क नहीं, दूसरे कॉलर के पास चलना होगा. कर्मवीर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए. कर्मवीर जी, आवाज आ रही है आपको?
आवाज आ रही है. नमस्कार सर
जी, आप पूछ लें सवाल.
क्या मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सवाल भी पूछ सकता हूँ? एक्चुअली मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ. मेरी उम्र 45 साल है और मैं हर महीने ये जो VPF होता है, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, उसमें इन्वेस्ट करता हूँ 88%, जो कोई 46,000 रुपए के करीब बैठता है. तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये पर्याप्त है और क्या ये एक अच्छा विकल्प है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि मैं और कुछ नहीं करता हूँ.
आपने उम्र कितनी बताई?
45 साल एक लड़का मेरे पास, खुद का घर है दिल्ली में।
मतलब 60 साल में अभी 15 साल बाकी है। राजीव बताएं।
जी कर्मवीर जी, आप बीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में अच्छी बात है और वो एक सुरक्षित निवेश है और उसमें सामान्य रूप से एक अच्छा रिटर्न जरूर मिलता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो एक तरह का फिक्स्ड इनकम कैटेगरी में आने वाला निवेश ही है, और यदि आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन चाहिए जो आपके लाइफ के बड़े फाइनेंशियल गोल्स होंगे उनके लिए, अभी आप 45 वर्ष यानी मध्यम आयु वर्ग में हैं और आपके पास अभी भी उम्र है, हालांकि ये मैं जरूर कहूंगा कि एक अच्छा खासा समय आपने बिता दिया है, जिस बीच में अगर आपने इक्विटी में निवेश किया होता यानी शेयर बाजार में, चाहे वो सीधे या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहा होता, लेकिन ठीक है, कहते हैं जब जागे तभी सवेरा, तो अभी भी आप अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा जरूर आप शेयर बाजार में लगाएं, और चूंकि आपने अभी तक शेयरों में बिल्कुल पैसा नहीं लगाया है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप म्यूचुअल फंड के रास्ते से निवेश शुरू करें। वीपीएफ जो आप चला रहे हैं वो आप जरूर चलाते रहिए, लेकिन अपनी बचत का कुछ हिस्सा आप इक्विटी में जरूर लगाइए म्यूचुअल फंडों के माध्यम से, और उसमें सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप सेंसेक्स ईटीएफ या निफ्टी ईटीएफ या इनके इंडेक्स फंड, सेंसेक्स इंडेक्स फंड या निफ्टी इंडेक्स फंड, इनको आप चुने किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड घराने का। लगभग सबके पास इस तरह के इंडेक्स फंड होंगे, ईटीएफ होंगे, उनमें से कोई भी चुन करके आप उनमें हर महीने अपनी बचत का कुछ हिस्सा लगाना जरूर शुरू करें। जो वीपीएफ आप चला रहे हैं वो आप चलाते रहें।
राजीव, अगर इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं तो क्या निफ्टी में अगर लगाएं तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 में ही लगाएं, या और जितने इंडेक्सेस हैं उसमें भी आप देख सकते हैं?
देखिए, ये शुरुआती है, मतलब ये मैं कहूँ स्टेपिंग स्टोन या एक पहला कदम जो है उसकी तरह से है। पहले उन्हें एक बात समझ में आने लगे कि ये किस तरह से काम करते हैं, उसके बाद तो फिर आपके सामने बहुत सारी चीजें खुलती हैं, और मैं कहूंगा कि उसमें बहुत ज्यादा हाथ पैर फैलाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने सेंसेक्स इंडेक्स फंड और निफ्टी इंडेक्स फंड इसमें लगाना शुरू किया, और उसके बाद जब आपको लगता है कि नहीं मेरी बचत बढ़ रही है मुझे थोड़ा सा और लगाना है, तो आप वहां पर मिड कैप में या स्मॉल कैप में इनके भी वही इंडेक्स फंड या ईटीएफ चुन सकते हैं, वो भी इससे अगला कदम हो सकता
और
है।
और अभी चूंकि मार्केट गिरा हुआ है अनुभव, तो ये इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टाइम टू इन्वेस्ट।
बिल्कुल,
एज अ स्टेपिंग स्टोन आल्सो, एज अ एंट्री पॉइंट फॉर पीपल हु हैव नॉट, लाइक यू सेइंग आवर लिसनर्स, ही हैज नॉट इन्वेस्टेड इन द इक्विटी मार्केट एट ऑल, सो दिस इज अ वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट फॉर सच पीपल।
सर्टेनली, यस
यस। एंड नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल फ्रॉम व्हिच इज कमिंग इन फ्रॉम मुंबई। रत्नाकर इज कॉलिंग फ्रॉम देयर। रत्नाकर, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क क्वेश्चन।
हेलो
जी,
हेलो, गुड इवनिंग सर
जी।
हाँ, मेरे दो सवाल है। एक पहला सवाल है कि अभी मैंने मेरे लड़के के लिए एक जगह लिया पुणे में, तो उसमें ऑल्सो आई एम को ओनर, तो मेरा एक दूसरा फ्लैट मैं अभी बेच रहा हूँ, तो वो फ्लैट का पैसा मुझे लड़के के फ्लैट में इन्वेस्ट करना है, तो कैपिटल गेन का क्या प्रोसीजर रहेगा और वो कितने टाइम तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और समझो वो पीरियड में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया तो कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट कैसा हो जाएगा, कितना टैक्स पड़ेगा, और आने वाले समय में मार्केट अभी जो कोलैप्स हो रहा है वो कैसे रहेंगे। थैंक यू
जी। रत्नाकर जी, जो आपका पहला सवाल है कि आप एक संपत्ति बेच रहे हैं और उस पैसे को आप एक नई संपत्ति में लगा रहे हैं, तो एक सामान्य समझ के हिसाब से मैं ये जरूर आपको कह सकता हूं कि आप जो नया निवेश नई संपत्ति में करेंगे, अगर आपने वो लगभग पूरा पैसा जो संपत्ति आप बेच रहे हैं उसका अगर आपने नई संपत्ति में लगा दिया, तो उससे आपको कैपिटल गेन में जरूर बचत होगी, लेकिन इस बारे में आप किसी टैक्स एक्सपर्ट से सीधे बात करके उसे अपनी सारी स्थितियां बताइए और उस पर सलाह लीजिए, वो एक ज्यादा बेहतर तरीका होगा, क्योंकि बिना सारी स्थितियां जाने हुए यहां पर मैं रेडियो पर आपसे कोई बात कहूं वो उचित नहीं होगा। दूसरा सवाल इनका निवेश के बारे में
जी, उन्होंने कहा मार्केट से कोलैप्स कर रही है उसके बाद।
जैसा अभी पिछली बातचीत में भी, पिछले सवाल पर जो चर्चा हुई उसमें भी अभी अनुभाजी जैसा जिक्र कर रही थी कि ये एक अच्छा समय हो सकता है एंट्री पॉइंट के रूप में निश्चित रूप से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मानिए कि आज अगर आपने पैसा लगाया और अगले एक हफ्ते में या अगले एक महीने में आप अपने शेयर को अपने खरीदे हुए भाव से घटे हुए भाव पे नहीं देखेंगे, ऐसी गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो एंट्री पॉइंट अच्छा होने का मतलब यह है कि बाजार ने अपने एक्सेसेज कम किए हैं, जो पहले एक हायर वैल्यूएशन के रूप में एक्सेसेज दिख रहे थे वो कम हुए हैं निश्चित रूप से। क्या बाजार यहीं से पलट जाएगा ऊपर, कोई नहीं जानता।
एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन एंट्री पॉइंट, इट्स लाइक आई सेड, एंट्री पॉइंट फॉर पीपल हु हैव नॉट एज येट एंटर्ड द इन्वेस्टमेंट द शेयर मार्केट एंड ऑल्सो फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन द शेयर मार्केट। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम बिकॉज यू नो द ब्लू चिप्स शेयर्स विच आर नॉर्मली वेरी हाई,
दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू रीएडजस्ट योर पोर्टफोलियो
एग्जैक्ट
टू एड स्ट्रॉन्गर शेयर्स एंड बेसिकली क्लीन अप योर पोर्टफोलियो
एब्सोल्युटली
गेट रिड ऑफ दोज मोमेंटम स्टॉक्स
राइट। एंड लेट्स नाउ टेक द नेक्स्ट कॉल फ्रॉम दिल्ली, दैट्स मिस्टर सतीश इज कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली। वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन।
My question is that whether my shares are stuck up in Investor Education Fund since 1.5 years, in spite of completing all the formalities, I am not able to take them out. Second question, whether it is good to pass the insolvency resolution professional exams. Thank you.
नहीं, आप सतीश जी क्या सुन पा रहे हैं मुझे? सतीश जी का कॉल शायद कट गया है। ये जहां तक मैं समझ पाया राजीव, ये पैसे अपने इन्वेस्ट किए हुए हैं इन्होंने और ये उस पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं। अब ये पता करना बहुत
उसका
जरूरी है,
कारण क्या है,
डीमैट में है या नहीं है,
एग्जैक्टली वो फिजिकल फॉर्म में है या उनका केवाईसी कम्प्लीट नहीं है, किस कारण से, या जिस ब्रोकर के थ्रू उन्होंने लगाया था, या जो
फ्रीज हो गया इन्वेस्टमेंट एजुकेशन फंड फ्रीज हो गया है इन्होंने कहा।
नहीं, लेकिन वो फ्रीज होने का कारण क्या है, जब तक वो चीज स्पष्ट नहीं होगी, उन्हें ऑब्वियसली जिस भी ब्रोकर के माध्यम से उन्होंने निवेश किया होगा, अगर शेयर हैं तो निश्चित रूप से ब्रोकर के माध्यम से किया होगा, उन्हें अपने ब्रोकर से संपर्क करके पूछना चाहिए कि ये फ्रीज क्यों हुआ है।
और सारी समस्याओं के समाधान के लिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से सेबी आजकल एक्टिव है, अगर आप वहां मेल लिखें तो वहां से जवाब देर सवेर जरूर आता है, एटलीस्ट ये सुझाव देने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं।
जरूर, वो एक प्लेटफॉर्म है और उसके अलावा आपके पास दोनों एक्सचेंज जो प्रमुख हैं उनके पास भी इन्वेस्टर हेल्पलाइन के एवेन्यूज हैं, आप उनके ऑफिस में जाकर के भी संपर्क कर सकते हैं।
जी,
अतनु शाह एक बार फिर जुड़ चुके हैं कोलकाता से। अतनु, बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछ लें।
गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सर, माय क्वेश्चन इज व्हाट डिमांड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट इट्स डिमांड इन इंडिया।
आपकी आवाज क्लियर नहीं है अतनु जी।
हाँ, हम फिर से बोल रहे हैं सर। व्हाट अबाउट डिमांड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट।
ओके, सो बेसिकली वांट्स टू नो व्हाट इज द डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन द कंट्री, द प्रोडक्ट्स व्हिच आर यू नो which are used for producing renewable energy, be it solar panels or other such, what is the demand for those products?
ये मांग लगातार बढ़ती जा रही है और देखिए, दरअसल भारत को ऊर्जा की जरूरत है। अब वो जिस फॉर्मेट में मिले, ट्रेडिशनली हम जो फॉसिल फ्यूल है उसके माध्यम से ये एनर्जी प्रोड्यूस करते रहे हैं, लेकिन अब इस सरकार का काफी जोर रहा है कि आप जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको अधिक से अधिक हिस्सेदारी आपकी टोटल एनर्जी बास्केट में बढ़ाई जाए, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से एक एंड कंज्यूमर के लिए क्या है, उसे तो अपने घर में बिजली चाहिए, या अगर कोई बिजनेस है तो उसे अपने प्लांट में बिजली चाहिए। लेकिन प्रोड्यूसर के तौर पे जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट हों, और नीति निर्धारक के रूप में सरकार, उसे अपनी दिशा चुननी है। तो आपके पास एक बैलेंस जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हम बोलें कि नहीं, हमें फॉसिल फ्यूल की जरूरत ही नहीं है, मतलब क्रूड ऑयल की जरूरत ही नहीं है या कोल बेस्ड प्लांट्स की जरूरत ही नहीं है, हमें सारा कुछ रिन्यूएबल की तरफ ले जाना है, चाहे वो सोलर हो या विंड एनर्जी हो, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन रिन्यूएबल को क्या हम पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, वो फ्यूचर है, हमें उस तरफ आगे बढ़ना ही बढ़ना है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर, वो एक काफी बड़ा सोर्स है एनर्जी का, तो इन सारे सोर्सेज का एक अच्छा बैलेंस बना करके चलना चाहिए और मुझे लगता है कि सरकार उसी दिशा में काम कर रही है।
और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि इसकी डिमांड इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को वो मतलब 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़े, वहां तक लिमिट हो। इसके लिए अभी जितना प्रोड्यूस हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी उससे 3 times ज्यादा आपको जरूरत है और भारत भी उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर चुकी हिस्सेदारी अपनी निभा रहा है। इस वजह से आने वाले समय में, आने वाले दशकों में इसकी जबरदस्त जरूरत पड़ेगी।
एंड वी डू हैव अ पीएम सोलर यू नो एनर्जी इन अ स्कीम व्हिच हैव वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट लास्ट ईयर दैट इज डूइंग वेरी वेल। द गवर्नमेंट लाइक यू सेड एट इट्स लेवल इज इंट्रोड्यूसिंग सच स्कीम्स, इट इज इंट्रोड्यूसिंग यू नो इट इज गिविंग मोर बजटरी एलोकेशन to the incentives, to the programs which will encourage such non-renewable energy sources.
Certainly.
Yeah. And now let's take the next call coming in from Delhi. That's Kunal calling us from there. Kunal, please ask your question.
Hello.
Ji, Kunal.
Am I audible?
Yes, you are audible. Please ask your question.
Yeah, ma'am, I have 2 small questions. I hope they are not too technical or you cannot discuss them here. एक तो वी कीप ऑन गेटिंग दिस इन द मार्केट, ये शेयर ऑपरेटर ड्रिवन है, इसने ऑपरेटर ने ऊपर कर दिया नीचे कर दिया, तो हाउ डू दीज कार्टल्स वर्क? अगर आप इसका मेरे को कुछ ब्रीफ बता पाए, क्योंकि यू विल नॉट फाइंड दिस आंसर एनीवेयर एल्स। दूसरा, अभी सर ने बात करी थी कि एक्सेसिव वैल्यूएशन को ट्रिम कर दिया गया है, तो किसी इंडस्ट्री में एक्सेस वैल्यू कोई पी होता है 100 का, किसी इंडस्ट्री में 40 का पी भी बहुत ज्यादा होता है, तो हाउ डू वी, इज देयर अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन चेक व्हाट इज द नॉर्मल पी ऑफ अ इंडस्ट्री?
जी कुणाल जी, आपने दोनों सवाल बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग और कहें कि इंटेलिजेंट सवाल पूछे हैं आपने। जो भी बाजार में दिलचस्पी रखता है उसे इन दोनों चीजों को जरूर समझना चाहिए। पहली चीज, ऑपरेटर ड्रिवन, ये ऑपरेटर कहीं नजर में नहीं आते और कहीं उनके बोर्ड नहीं लगे होते, साइन बोर्ड तख्ती लगा करके वो नहीं बैठे होते हैं कि आप कहें कि अच्छा ये शेयर ऑपरेटर ड्रिवन है या नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, एक निवेशक के रूप में आपको सेंसिबल इन्वेस्टिंग करनी है और उसका तरीका क्या है, आप फंडामेंटल्स पे जाइए, आप कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छी तरह से देखिए, उसके वैल्यूएशन जिस पर आपके पहले से नजर है आप उसके वैल्यूएशन को देखिए, कंपनी के ग्रोथ प्लान्स क्या है, उसकी इंडस्ट्री का एनवायरमेंट क्या है, ये सारी चीजें समझ करके अगर आप काम करेंगे और अपना फोकस जो है वो बहुत ही जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनकी तरफ ले जाने के बदले जो अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, एस्टैब्लिश्ड कंपनियां हैं, उन पर अगर आप अपना ध्यान अधिक रखेंगे तो आप इन सारी चीजों से बचे रहेंगे जिनको आप कहते हैं ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स। दूसरे, आपने पूछा एक्सेस वैल्यूएशन को कैसे समझा जाए, ये बात आपकी सही है, कहीं पे किसी इंडस्ट्री में आप कहें कि 15-20 का पीई है वो भी महंगा लगता है, कहीं पे आपको 40 का पीई भी सस्ता लगता है, तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो बेसिकली आपको कंपनी और उस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट समझनी पड़ेगी, उसके प्रोस्पेक्ट्स किस तरह से हैं। जो इंडस्ट्री या जो कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है उसको 40 का पीई भी कम लगेगा, और जिस इंडस्ट्री में स्टैग्नेशन है या जिस कंपनी में स्टैग्नेशन है वहां पर आप 10-15 का पीई भी कहें कि वो बहुत महंगा लगेगा।
ये जानना चाह रहे हैं कि कोई एक प्लेटफॉर्म है जहां इन कंपनीज के पीई के बारे में हम पता कर सकते हैं?
देखिए, पीई के नंबर्स तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पे आसानी से उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं, लेकिन उसके आगे का रिसर्च आपको खुद करना पड़ेगा कि वो जो पीई हमें दिख रहा है वो ठीक है, सस्ता है, महंगा है।
संजय मुंबई से जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछ लें। कट चुके हैं संजय जी का कॉल, आगे फिर आप जुड़े हमसे। तब तक इस सप्ताह के शेयर बाजार पर चर्चा कर लें। इस सप्ताह भी लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है कि घरेलू शेयर बाजारों में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स पूरे सप्ताह के दौरान 628 अंक गिरा है, 75,311 पर आ चुका है। निफ्टी में भी पूरे सप्ताह के दौरान 133 अंक की गिरावट रही और ये 22,796 पर आ गया। विस्तारित बाजार में हालांकि इस सप्ताह बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप लगभग 2% तेजी पर बंद हुए। पहले थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे राजीव जी के साथ इस पर, फिर संजय जी आपके पास आते हैं। तो अब देखिए, एक जहां हम 25,000-26,000 निफ्टी को देख रहे थे, अभी 22,000 पर आ गया है, और थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि ये बहुत एक अपॉर्चुन मौका हो सकता है अगर कोई इस समय इन्वेस्ट करता है तब। लेकिन आम तौर पर राजीव ये होता रहा है कि जब मार्केट गिरता है तो बहुत लोग घबरा कर इससे निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे बिकवाली बढ़ती है और मार्केट में और गिरावट आती है। एक आम निवेशक इस वक्त कितनी और किस सेक्टर में खरीदारी कर सकता है, क्या उचित होगा इसके लिए?
देखिए, एक समय था जब आप किसी भी सेक्टर में हाथ लगाते, बीच में एक अच्छा लंबा फेज चला जिसमें आप कहें कि बाजार का हर हिस्सा चल रहा था। यहां पर क्या वो स्थिति आ गई है दोबारा? क्या बाजार इतना सस्ता हो गया है कि आप कहीं भी पैसा लगा दें और वो आपका पैसा आगे बढ़ जाएगा? आज की तारीख में वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन जो 25-26 हजार के बीच में जब निफ्टी था और उस समय वैल्यूएशन की चिंता हर कोई जता रहा था, आज की तारीख में वो चिंता कम हो गई है। लेकिन क्या हम एकदम सस्ते बाजार में आ गए हैं? वैसा भी नहीं है। तो आपको सोच समझ करके पैसा लगाना पड़ेगा। सेक्टर वाइज अगर मैं इन जनरल मार्केट पर्सपेक्टिव की बात करूं, जो आम धारणा है वो बैंकिंग में, फार्मा में, इस सब में लोग थोड़ा मान रहे हैं कि चूंकि ये पहले ज्यादा चले भी नहीं थे और इनमें गुंजाइश अभी बनी हुई है, इस तरह के सेक्टर्स चुने जा सकते हैं। वो लिस्ट लंबी हो सकती है, लेकिन सबको अपना अपना रिसर्च करना पड़ेगा और उसके हिसाब से।
लेकिन खास तौर पर राजीव, अगर हम बात करें इंफ्रा की, हमने देखा कि पिछले साल के बजट में भी इंफ्रा पे बहुत जोर था और उसके बाद पूरे साल इंफ्रा के जो शेयर्स थे इस सेक्टर के काफी बढ़े थे, लेकिन अभी थोड़ा सा स्टैग्नेशन उसमें है, थोड़ी सी गिरावट भी है। हालांकि पूरा मार्केट गिरा है, ग्लोबल फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं, इसके बावजूद इंफ्रा का फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं?
देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को अपना बनाना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहां अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि बस इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, उस सेक्टर की सारी कंपनियां चलेंगी। वहां पर आपको बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक होकर के रिसर्च करना पड़ेगा, कंपनी के ऊपर डेट बर्डन कितना है, कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कितनी है, कंपनी के हाथ में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस गति से चल रही हैं, क्या वो प्रोजेक्ट्स कहीं अटके हुए तो नहीं है। आपको काफी गहराई से जाकर के उसमें रिसर्च करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज उसमें जरूर मिलेंगी, लेकिन आप बस एक बात ध्यान रखिए कि भाई फैंसी हो गया कोई सेक्टर, इसलिए उसमें पैसा नहीं लगाना है।
एंड नाउ लेट्स टेक द कॉल फ्रॉम संजय, who's calling us from Mumbai. Sanjay, welcome to the program. Ask your question.
Sanjay ji, aap sawal pooch sakte hain, please. Go ahead.
Ji, namaskar sir. Main Sanjay Mumbai se.
Ji.
Sir, ye silver aur gold mein kis tarah se invest kar sakte hain? Aur sir, abhi ye market itna kyun down chal raha hai? Main mutual fund mein invest karta hu, hazaron rupaye down ho gaya. Thank you.
Ek samany chinta sabki.
Ji.
Dekhiye, ab बाजार क्यों गिरा है, अभी हम लोग वही चर्चा कर रहे थे कि जब 25-26 हजार के आसपास निफ्टी था तो वैल्यूएशन की चिंता थी, उसके अलावा दूसरे तमाम फैक्टर्स होते हैं, बीच में आपकी जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े हैं वो थोड़े हल्के पड़े। लेकिन बाजार को भविष्य देखना होता है, तो मुझे लगता है कि यहां से वापस आगे की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देख करके बाजार की स्थितियां बहुत खराब नहीं होंगी, यहां से अच्छी ही होंगी।
इनका दूसरा सवाल था सिल्वर,
सोने और चांदी में किस तरह से निवेश करें। तो यहां संजय जी, आपके लिए बहुत आसान तरीका है, आज की तारीख में उपलब्ध है। आप गोल्ड ETF और सिल्वर ETF आप चुन सकते हैं। उसके लिए आपको कोई डिमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, या अगर पहले आपने खोला हुआ है तो अच्छा है। तो आप गोल्ड ETF और सिल्वर ETF इनके माध्यम से अगर आप पैसा लगाएंगे तो उसमें आपके पास लिक्विडिटी, यानी जब चाहें तब पैसा निकाल पाने की सुविधा भी रहेगी और सेफ भी रहेगा। घर में आप सोना चांदी रखें वो बहुत सेफ चीज नहीं है।
बिल्कुल, और मार्केट आमतौर पर अनुभव जब गिरता है तो सोने की कीमतें तो बढ़ती
हैं।
अभी हम कह सकते हैं कि सोने की चांदी हुई है।
हाँ, लेकिन 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 सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अभी एक रिस्क को महसूस करके सेफ इन्वेस्टिंग की तरह से गोल्ड सिल्वर की तरफ ज्यादा झुकाव रहा, गोल्ड खास करके। लेकिन अगर इक्विटी की तरफ वापस निवेशकों का रुझान बढ़ गया तो फिर सोने की चमक हल्की पड़ेगी।
बिल्कुल।
और लेते हैं अगली कॉल, दैट इज अगेन कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वेयर फ्रॉम
वैद्यनाथ।
जी वैद्यनाथ कॉल कर रहे हैं, सवाल पूछिए।
नमस्कार मार्केट मदना टीम।
जी नमस्कार, सवाल पूछिए।
सर जी, सवाल ऐसा है कि क्या आम निवेशक के लिए सही समय है ये निवेश करने का इक्विटी में? धन्यवाद।
ये सवाल हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अनुभव जी ने कहा कि हाँ, ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, और हाँ बिल्कुल अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, सिर्फ बशर्ते आप इस बात को ध्यान रखें कि आपने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा, वो अगले एक महीने में 95 रुपए का नहीं हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता।
टाइम पीरियड अगर थोड़ा सा अपना लंबा रखें, मतलब 3-4 साल का रखें, तो कोई भी समय
वो शायद 3-4 साल भी छोटा है। अगर आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं
जी,
तो आपको शेयर बाजार में 10-20 साल इस तरह से सोचना पड़ेगा।
जी एंड द नेक्स्ट कॉलर इज कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली दैट्स मिस्टर प्रीतम बट बिफोर वी टेक योर कॉल मिस्टर प्रीतम लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ हाउ द यूएस मार्केट्स बिहेव्ड दिस वीक द यूएस मार्केट्स डिक्लाइंड यस्टरडे एक्सटेंडिंग देयर सेल ऑफ इन द वेक ऑफ अनप्लेजेंट इकोनॉमिक रिपोर्ट्स न्यू टैरिफ थ्रेट्स एंड वरीज ऑफ सॉफ्टनिंग कंज्यूमर डिमांड ऑल थ्री मेजर यूएस स्टॉक इंडिसेस मूव्ड लोअर ऑन द हील्स ऑफ द डेटा द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फेल 749 पॉइंट्स और 1.7% टू 43,428 The S&P 500 lost 104 points or 1.7% to 6,013 and the Nasdaq Composite lost 438 points or 2.2% to 19,524. The S&P 500 suffered its largest single-day percentage drop since December 18th. For the week, all three indices lost ground, with the Dow registering its steepest Friday-to-Friday plunge since mid-October. Economic data showed U.S. business activity decelerating and consumer sentiment deteriorating. The data comes on the heels of Walmart's disappointing guidance on Thursday, which sparked fears of dampening consumer demand. And now let's take the call from प्रीतम प्रीतम वेलकम टू मार्केट मंत्र जी सवाल पूछे
जी नमस्कार सर मैं पता करना चाह रहा था कि अब जैसे कि गोल्ड का जो है इन्वेस्टिंग के लिए तो ठीक है जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ठीक है लेकिन जो अब शादियों का सीजन चल रहा है या आगे भी चलेगा तो उन्हें उनको दिक्कत होगी तो उसका कुछ ऐसा है कुछ कि गोल्ड के रेट कब तक हल्के होंगे कम होंगे या आगे बढ़ते ही रहेंगे
जी प्रीतम जी गोल्ड को अगर आप एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल के रूप में देखते हैं तो उसकी रणनीति अलग है और यदि घर में एक महीने बाद शादी है तो उसके बारे में तो अलग तरीके से फैसला लेना पड़ता है वो ऐसा मौका है जिसको आप जिस समय आप सोने की खरीदारी टाल नहीं सकते तो उस समय तो जो भाव है उसी में आपको अपना बजट में थोड़ा मैनेज करके करना पड़ता है तो ये सब चीजें जो होती हैं इनको आपको 5 साल 10 साल 20 साल पहले से प्लानिंग करते रहना पड़ता है ये ऐसे जीवन के फाइनेंशियल बड़े फाइनेंशियल गोल्स हैं जैसे बच्चों की शादी या आमतौर पर पेरेंट्स इस बात का ध्यान करते हैं तो इसके लिए आपको 20 साल 10 साल इस तरह से पहले से सोच करके चलना पड़ता है आप इमीडिएटली 2-4 महीने के उतार चढ़ाव से ये फैसला नहीं कर सकते कि मुझे इस समय सोना खरीदना है या नहीं खरीदना है अगर शादी घर में अगले महीने या 2 महीने बाद आने वाली है तो
जी एंड नाउ लेट्स टेक अनदर न्यूज यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज इन्फॉर्म्ड दैट द फर्स्ट रीजनल ऑफिस ऑफ द सेंट्रल रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी विल बी ओपन्ड इन पुणे ही वाज स्पीकिंग एट द कंक्लूडिंग सेरेमनी ऑफ द प्लैटिनम जुबली ईयर ऑफ द जनता सहकारी बैंक इन पुणे टुडे मिस्टर शाह सेड दैट सिमिलरली एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फॉर्म्ड टू हेल्प एंड सपोर्ट द कोऑपरेटिव बैंक्स अक्रॉस द कंट्री टू गेट देम आउट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क टू strengthen all the cooperative banks. Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Ministers Ajit Pawar and Eknath Shinde, Union Minister of State for Civil Aviation Muralidhar Mohol, State Minister for Higher Education and Technical Education Chandrakant Patil and other dignitaries were present on the occasion. Rajiv, you know, we were just talking about the U.S. markets and how they lost almost like 2% during the week. A persistent, question in everybody's mind is U.S. President Donald Trump, who's announced these tariffs. So are these a big worrying factor? Because I think that is affecting all the markets around the world. What would you say?
देखिए अमेरिकी बाजार में जब ट्रंप चुने गए और ये चुनावी नतीजा सामने आया उसके बाद से ही एक उत्साह देखने को मिला और उसके पीछे लोगों को ये लगा कि ट्रंप अपनी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए कुछ अच्छे उपाय करेंगे लेकिन अब टैरिफ को लेकर के जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं जिस तरह के तेवर उन्होंने दिखाए हैं ये एक तरह की दोधारी तलवार है शुरू में तो अमेरिकी बाजार को अच्छा लगा लेकिन अब वो उसके रिस्क फैक्टर्स को भी कहीं ना कहीं फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है और खास करके इस हफ्ते में जिस तरह से अमेरिकी बाजार अचानक से थोड़ा सा लाली की तरफ बढ़े हैं
और मुझे और खास करके राजीव ये भी जबकि अभी हर फ्रंट पर वहां पर उथल पुथल चल रही है अभी नेवल चीफ को हटाया उसके पहले जनरल को हटाया तो मार्केट हो सकता है कि
मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर अमेरिकी बाजार यहां से लगभग 10% करेक्ट हो जाए
बिल्कुल और अब वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है राजीव आप आए आपसे बातचीत की आपका बहुत बहुत शुक्रिया
धन्यवाद
And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi will release the 19th installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme on Monday. Domestic markets decline for the second straight week. Both Sensex and Nifty drop over 0.5%. And US benchmark indices fall nearly 2% on concerns about economy and tariffs. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow. Do tune in then. Till then, namaskar.
Namaskar. Market Mantra.